शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने बताया तुम बच्चे वॉरियर्स हो, लौकिक रीति से दुनिया में भी जो वॉरियर्स हैं लड़ाई करते हैं वो अपने राजा के लिए, और तुम बच्चे जो लड़ाई करते हो माया से और अपने आप को राज तिलक देने के लिए। फिर बाबा ने दूसरा टाइटल दिया कि तुम बच्चे ही पैगंबर भी हो और मैसेंजर भी हो। साथ साथ बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अपने आप को राज तिलक खुद ही देना है, इसमें आशीर्वाद या कृपा आदि की कोई बात नहीं है। इसके लिए खुद पुरुषार्थ करना है और ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और किसी और किसी को नहीं देखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, खुद पुरुषार्थ किया। बाबा ने ये नहीं सोचा कि ये नहीं करता तो मैं क्यों करूं। बाबा हमेशा, हालांकि बाबा को पता था कि मैं क्या से क्या बनने वाला हूँ, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या ध्यान रखा कि मेरे को अगर ऐसा बनना है तो मुझे खुद ही पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए आज भी बाबा ने कहा कि बाप को फॉलो करो और कृपा आशीर्वाद की नहीं, खुद ही मेहनत करनी है तभी राज तिलक ले सकेंगे और दूसरों को नहीं देखना है। फिर बाबा ने कहा कि लौकिक में भी फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, दान करते हैं, वो करते इस जन्म के लिए, लेकिन तुम बच्चे भी दान करते हो भविष्य राजधानी के लिए, तो तुम भी बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हो। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 8 जनवरी 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता, तुम श्रीमत पर चलते रहो। नीचे बच्चे बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता, तुम श्रीमत पर चलते रहो। आज का प्रश्न है, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? इसका उत्तर है, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। बाबा की शिक्षाओं को अच्छी रीति पालन करो। अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं, फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना ये बाबा को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्यों नहीं पुरुषार्थ करता। तो बाबा कहते हैं दूसरे को नहीं देखना है, मन मना भाव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। अपने को आपे तिलक कैसे मिलता है? मन मना भाव, मन मना भाव, इससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से तुम बेगट टू प्रिंस बनते हो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो बाबा को कितनी बार कहना चाहिए? बाबा ने कहा ये दो बार भी कह सकते। क्यों? ब्रह्मा बाबा भी है, शिव बाबा भी है, और आप कितनी बार कहेंगे? एक बार, दो बार या तीन बार? दादी जानकी हमेशा तीन बार करती थी। दादी क्या करती थी? तीन बार। एक बार खुद की ओम शांति, एक ओम शांति बाबा को, एक ओम शांति ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कहते हैं जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो दो बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है, एक में ही दोनों साथ है ना। एक है अव्यक्त और दूसरा है व्यक्त, दोनों इकट्ठा है। दो का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। आवाज तो एक ही रथ की है ना। अब फिर शिव बाबा जब बोलते हैं थोड़ा सा और स्टाइल में होगा, ब्रह्मा बाबा तो आराम से फटाफट बोल देंगे। कभी कभी शिव बाबा और बाबा दोनों इकट्ठे बोलते हैं, कभी कभी दोनों अलग अलग भी बोलते हैं, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये कहां भी लिखा हुआ नहीं है कि भगवान आए हैं इसके तन में। गीता में भले लिखा है कि साधारण तन में प्रवेश करता हूं, लेकिन वो तन कौन सा वो तो नहीं जानते ना। तो बाबा कहते कहां भी लिखा हुआ नहीं है, ये कहां भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं इस साधारण तन के बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं, इसका आधार लेता हूं। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस भी हैं जो कुछ रियल भी हैं, कुछ कुछ है ना, कि जब धर्म की ग्लानी होती तब मैं आता हूं, या फिर है कि साधारण तन का आधार लेता हूं। लेकिन है वो, लेकिन उसको जानते नहीं कब आएगा, किस में आएगा। बाबा ने कहा वो तो जानते ही नहीं है ना। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्शंस हैं जो कुछ रियल भी हैं। ये रियल अक्षर है कौन सा? मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। इसके लिए ये कहना ठीक है, इनके लिए ये कहना ठीक है, पहले पहले सतयुग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, इसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए भी कहते हैं, ये भी नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। गीता में भी कहा ना, तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितने जन्म लिए, उसको कह दिया। तो बाबा कहते ये भी नहीं जानते कि कितने पुनर्जन्म लिए हैं। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कलट। ज्ञान कांड अलग है, कलट मीन्स कांड, बाबा कहते हैं मार्ग। तो बाबा कहते ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है, ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, बाप एक ही बार सबकी सरगति करने बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर सबकी एक बार ही प्रारब्ध बनाते, पूरे कल्प में बाबा एक ही बार आते हैं सबकी सदगति करने के लिए, और बाबा एक ही बार आते हैं पूरे कल्प में सबकी प्रारब्ध बनाने। बाबा आकर सबकी एक बार ही प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की, प्रारब्ध भी बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया के लिए, बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने के लिए, इसलिए इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है, किसका, राजयोग का बहुत महत्व है, क्योंकि बाबा ही सिखलाते ना, इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलाए, विदेशों में दूसरे देशों में ये सारा चाहना रहती है कि भारत का जो योग है प्राचीन राजयोग वो बहुत पावरफुल है, उसके अंदर बहुत कुछ प्राप्तियां हैं, तो वो लोग सीखना चाहते हैं। फिर कई लोग क्या करते हैं, नाम भारत का प्राचीन योग कहते हैं लेकिन पता नहीं क्या क्या सिखलाते रहते ना। तो बाबा कहते हैं चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग वहां जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं, तो वे भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं कि योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। पता है कि योग से क्या क्या प्राप्तियां होती है, पैराडाइज भी स्थापन हुआ और कई प्राप्तियां हुई, इसलिए लोग सीखना चाहते हैं। लेकिन वो तो क्या सिखाते, हठ योग सिखलाते ना, तो बाबा क्या सिखलाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। तो वे भी समझते हैं कि हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते, अंतर वो समझते योग से पैराडाइज स्थापन हुआ था, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे योग बल से पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने, बाबा पैराडाइज स्थापन करते लेकिन बच्चे योग बल की मदद करते हैं। पैराडाइज स्थापन किया है बाप ने, कैसे स्थापन करते ये कोई भी नहीं जानते। वह राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं, जिस्मानी कोई भी मनुष्य ये राजयोग सिखला न सके। आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, कहेंगे राजयोग सिखाते हैं उसमें कई बातें मिक्स कर देते ना, इसलिए बाबा कहते हैं एडल्ट्रेशन भी है और करप्शन भी है। तो आजकल एडल्ट्रेशन करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित पावन, फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा, बाबा कहते मैं पतितों को पावन बनाता हूँ, फिर कौन दूसरा है जो आकर के पावन को पतित बनाता है। तो बाप कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ, जरूर पतित बनाने वाला भी कोई होगा ना। अभी तुम जज करो बरोबर ऐसे है ना, बाबा कभी मुरली चलाते थे, बाबा बच्चों को कहते अच्छा जज करो, बाबा कई बार बच्चों से प्रश्न पूछते थे बोलो बताओ मैं जो सुना रहा हूँ वो राइट है या जो पढ़ा हुआ है वो राइट है। तो बच्चे फिर क्या करते थे, ध्यान से फिर बाबा को जवाब भी देते थे। बाबा ने एक किताब बनवाई थी मनुष्य मत और ईश्वर मत, बहुत पतली सी किताब थी, उसमें बाबा ने लिखवाया था कि मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, वो किताब भी बनवाई थी। तो बाबा कहते हैं तुम जज करो बरोबर ऐसे है ना, मैं ही आकर सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाता हूँ, ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है, भक्ति मार्ग में है अल्प काल क्षण भंकुर सुख, वह ये है 21 पीढ़ी का सुख। भक्ति में भी थोड़ी थोड़ी प्राप्ति होती है, लेकिन अलग काल की है। बाबा कहते इसमें जो प्राप्ति है वो 21 पीढ़ी का सुख है, जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी। बाबा की श्रीमत इतनी न्यारी प्यारी है, दुनिया वाला कोई सुने कहेंगे क्या कहते, बाप को याद करो मन मना हुआ, वो समझ ही नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते ये न्यारी है क्योंकि इसमें कई राज भरे हुए हैं। बाप तुमको जो सदगति देने के लिए श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। बाबा का क्या कहते हैं, दिल लेने वाला बाबा, दिल वाला है ये बाप सबका दिल लेने वाला है। जैसे वे जड़ दिल वाला मंदिर है, फिर ये है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के चित्र बने हुए, नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर प्राप्ति के चित्र हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है, दिल वाला बाप मिला है सर्व का। बाबा कहते देखो बाबा कितना दिल लेते हैं, दुनिया में देखो तो हर प्रकार से दुख देते रहते, हर एक को दिल दुखाते रहते, कोई न कोई बात कह करके। बाबा तो क्या करते हैं, बच्चों की दिल लेकर के सब दुखों को दूर कर देते हैं, और बाबा बच्चों को आदत भी देते हैं, बच्चे निश्चिंत रहो, बाप बैठा हुआ है। इस समय बाप सबका दिल लेने वाला, सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला है। कितना ऊंच से ऊंच गाया हुआ है, ऊंच से ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भल चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है। वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है। ज्ञान के हिसाब से बाबा कहते देवताएं थोड़ी शिव की पूजा करते हैं, द्वापर में चल उन्होंने दिखा दिया, भल दिखा दिया, लेकिन वास्तव में जब देवताएं तब तो पूजा ही नहीं करते, शिव को तो जानते ही नहीं है। तो बाबा कहते वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है, वह तो भक्ति करते ही नहीं है। सत्य त्रेता में भक्ति थोड़ी करते हैं, भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी कर सकते हैं, वह तो है ब्रह्म ज्ञानी। सन्यासी कौन है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि वो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं ना, वह है ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी। जैसे ये आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। तो बाबा बता रहे हैं ब्रह्म भी जो है वो रहने का स्थान है। तो बाबा कहते हैं जैसे ये आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं, ना उनको ये महामंत्र मिलता है। मन मना भाव का बाप को याद करने का महामंत्र नहीं मिलता, वो तो कहे और ही मंत्र देते रहते हैं। ये महामंत्र बाप ही आकर के संगम पर ही देते हैं। सर्व का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज समझाते, बाबा की समझानी भी इतनी सहज है, बाबा की भाषा भी बहुत सहज है, इतनी सहज है जैसे बाप बच्चों से बात करते या आपस में एक दो से बात करते ना। तो इसलिए बाबा को कहते हैं बाप कितना सहज रीति समझाते। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो, अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो, तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाए। आत्मा के अंदर खाद निकालने का एक ही रास्ता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती हैं। सोने की भी तो कैरेट होती है ना, सोने का होता है 24 कैरेट 22 कैरेट फिर धीरे धीरे कम होता है लास्ट में आकर के कुछ नहीं बचता है बिल्कुल मिक्स हो जाता है। तो बाबा कहते सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना तो देखने में भी नहीं आता, देखने में भी आ जाए तो लोग डरते हैं, पहनने से ही डरते हैं, उनको डर लगता है कोई सोना खींच ना ले। और आजकल जो सोना मिलता है कितनी मिलावट होती है, कितनी मिलावट उसमें डाल देते हैं क्योंकि कलयुग की दुनिया है ना। तो बाबा कहते हैं सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना भी देखने में नहीं आता है, सतयुग में तो सोने के महल होते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता, वहाँ ईंट हो पत्थर हो बजरी हो, अभी तो देखो कितनी वैल्यू है पत्थर बजरी की, इतनी वैल्यू है सोने से भी ज्यादा वैल्यू हो गई है क्योंकि ये सारा मकान में काम आता है। और वहाँ तो ये सब जरूरत ही नहीं रहती है, ना ईंट होगा ना पत्थर होगा, सोने के भी महल बनते हैं। वहाँ ईंट पत्थर आदि का कोई काम ही नहीं होती है, बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कोई कीचड़ पट्टी नहीं होता, कीचड़ पट्टी बाकी चीजें नहीं होती हैं। वहाँ साइंस का बहुत सुख है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है और सतयुग में क्या होगा, बाबा ने कहा साइंस यूज करेंगे लेकिन साइंस घमंडी नहीं होंगे। इस समय साइंस घमंडी है, सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है, यहाँ पर साइंस से अल्प काल का सुख, फिर इससे बहुत भारी दुख भी मिलता है। बॉम्ब्स आदि ये सब विनाश के लिए बनाते ही रहते हैं, बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं फिर खुद बनाते रहते। देखो ना विश्व की हालत क्या, कोई छोटा देश एक बॉम्ब बना ले, कोई ट्रायल कर लेता बड़ा उसको और धमकी देता है कि तुमने ऐसा बनाया हम इसे और पावरफुल बनाएंगे। उनको पता भी है बॉम्ब से विनाश होना है, फिर भी बनाते जाते फिर कहते पता नहीं कोई हमको प्रेर रहा है। बम्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं फिर खुद बनाते रहते हैं, समझते भी हैं इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है अवश्य, लेकिन हम फिर भी बनाते रहते, पता है कि इसे मौत होनी है लेकिन हम फिर भी बनाते हैं। तो बुद्धि मारी हुई हुई ना, कई बार बच्चों का होता है ना गलत काम करते भी रहते, पता भी ये गलत है फिर भी करते रहते, उसको क्या कहेंगे, तुमको समझ आता है या नहीं आता, क्यों तुम्हारी बुद्धि मारी हुई है क्या। तो बाबा कहते देखो समझ भी नहीं है फिर भी बनाते हैं क्योंकि ड्रामा में ऐसा बना हुआ है और फिर बुद्धि भी मारी हुई है। बॉम्ब्स आदि सब विनाश के लिए बनाते ही रहते, बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं फिर खुद बनाते रहते हैं, समझते भी हैं इन बॉम्ब से हमारी ही मौत होनी है लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई हुई ना, ये सब ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते, इतना डर बैठ गया बनाते ही रहेंगे। तो बाबा कहते बनाने के सिवाय रह नहीं सकते, मनुष्य समझते हैं इन बॉम्ब से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन हमें प्रेरित कर रहा है, हम बनाने बिगर रह नहीं सकते, बनाएंगे तब तो सारा विनाश होगा ना, जरूर बनाने ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नोंद है, ये बॉम्ब्स बनाना विनाश का सीन लाना ये सब बाबा क्या कहते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है, बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में नोंद है, कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे परंतु पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है, शांति का सागर बाप ही शांति सुख और पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहाँ तो दूध की नदियां बहती हैं, विष्णु को खीर सागर में दिखाते। नेपाल में काठमांडू में एक तालाब बनाया हुआ है, बहुत बड़ा तालाब है और उसमें विष्णु जो है पत्थर की मूर्ति, बहुत बड़ी उसकी मूर्ति है और उसमें उसको सुलाया हुआ है, सुलाया मीन्स ऐसे हाथ ऊपर किया हुआ जैसे वो रखा है। तो पहले जमाने में तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते थे और अभी तो क्या दूध क्या डालेंगे, दूध की बूंद डालेंगे, बाकी तो पानी डाल के आते हैं। तो बाबा कहते ये भी एक सिम्बॉलिक है कि बना देते हैं, वास्तव में कोई सोता थोड़ी है। तो सतयुग का ही उदाहरण है कि सतयुग के अंदर इतनी सब प्राप्तियां होती हैं, तो वहां पर जब जाते हैं ना तो कोई दूध घी पता नहीं क्या क्या डाला होता है। अब आप सोचते हैं जब घी डालेंगे तो चिप 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 करता है ना, इतनी सफाई तो होती नहीं है, लेकिन भक्ति भावना है, उस भावना के कारण जाते हैं, दूध का लोटा थोड़ा सा डालेंगे बाकी सारा पानी डालते हैं। जैसे शिवलिंग के ऊपर भी क्या करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दूध में भी सारा पानी मिलाते हैं। आज की दुनिया के अंदर तो मिक्सचर टी है ना। तो बाबा कहते हैं वहां तो दूध घी की नदियां बहती हैं, विष्णु को की सागर में दिखाते हैं, ये भेंट की जाती है। वह कहां वह खीर सागर, कहां ये विशेष सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं, पत्थर का बनाया हुआ, फिर पत्थर ऊंचा किया हुआ है और उसके ऊपर ही उसको सुलाया हुआ है। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते, इतना खर्चा होता है देवी की मूर्ति बनाने में, बहुत खर्चा करते हो, खर्चा करते करते क्या करते फिर लास्ट में उसको जाकर के डुबो के आते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते फिर समुन्द्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। अब समुन्द्र में डालने जाते हैं वो नहीं डूबती है, तो क्या करते हैं धक्के मार मार के उसको डालते हैं, फिर कोई तो उसके ऊपर भी चढ़ जाते हैं, कहाँ उसकी पूजा किया, कहाँ उससे मनोकामना पूर्ण किया और कहाँ उसको धक्के देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है धक्के देते देते खुद भी बीच में चले जाते हैं। तो ये तो सब भक्ति मार्ग में होता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं देवियों की मूर्ति कितना खर्चा कर बनाते फिर समुन्द्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। ये है गुड़ियों की पूजा, कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो क्या करेंगे, बाबा कहते अब तुम किसके मंदिर में जाएंगे, तो बाबा कभी कभी भेजते थे जाओ मंदिर में जाओ देखे तुम्हारा विचार सारा मंथन कैसे चलता है। अभी बाबा कहते हैं अब तुम किसी के मंदिर में जाओ तो तुम हर एक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने के। अभी कभी कभी जाते हैं मंदिर देखने के लिए, बहुत महिमा करेंगे, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर बनाया, बड़ा अच्छे कपड़े थे, वो तो है ही है। लेकिन बाबा कहते कितना विचार सागर मंथन किया कि हम जब वहां पर होंगे तो हमारे कितना सुंदर सब चीज होंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। वेद शास्त्र आदि में ऐसा कोई एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं। यहाँ बाबा जो पढ़ाते हैं उसमें हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। वेद शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन वहां पर पढ़ के आते एम ऑब्जेक्ट तो नहीं होता ना। वेद शास्त्र आदि में कोई भी एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम एंड ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने बड़े साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। ज्ञान से गति भी होती है, सदगति भी होती है और क्या बनते हैं, संपत्तिवान। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है वह है जड़ और ये है चैतन्य, हू बहू जैसे यहां झाड़ में दिखाया ना नीचे कैसे तपस्या कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है। तो बाबा कहते वहां पर भी ऐसे कि नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर छत पर स्वर्ग दिखाया है। जैसे हूब हो झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। देखो एक्यूरेट इतना बनाया बाबा दिलवाड़ा मंदिर की, बहुत महिमा भी करते हैं। बाबा कहते देखो कितनी मेहनत से बनाया है और उसके अंदर कितना बड़ा रहस्य समाया है, बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कहाँ सतयुग होगा, कितना अच्छा होगा, उसकी भेंट में तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बहुत खर्चे से बनाया हुआ है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं। वहां तो गंदगी की कोई बात ही नहीं, कोई भी प्रकार की गंदगी नहीं, किसी भी तरह की गंदगी नहीं, ना गंध फैलाने वाले जानवर होते हैं, ना कीड़े मकोड़े। यहाँ तो देखो कितने छोटे छोटे कीड़े कहाँ कहाँ से आ जाते, गंदगी हुई तो उसके ऊपर कितने मच्छर कीड़े आ जाते। तो बाबा कहते वहां पर कोई भी गंदगी नहीं हो गई, वहां तो गंदगी की बात ही नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे। गरुड़ पुराण में इतनी भयानक बातें लिखी, ये करने से होगा, ये पाप करने से इसकी इतनी कड़ी सजा है, वो क्यों लिखा है, ताकि मनुष्य की बुद्धि में कुछ बैठे, रियलाइजेशन हो तो सुधरे। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है ही नहीं। अभी ईश्वरी स्थापना हो रही है, ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे, उनको ही हेमली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं, किसके लिए लड़ाइयां होती है, फौज जाती है, तो वो जो लड़ाई करते किसके लिए करते, अपने राजा के लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं। और बाबा कहते तुम जो करते वो किसके लिए करते हो, तो बाबा कहते हैं बाप ने समझाया है वह लश्कर जो लड़ते हैं वह जो सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए, तुम यहाँ पर माया पर जीत पाने के लिए करते हो। तुम्हारी लड़ाई और उनकी लड़ाई, वो भी जो लड़ते अपने लिए नहीं करते, वो राजा रानी के लिए या देश के लिए करते हैं, और तुम जो लड़ाई करते हो माया पर जीत पाने के लिए, वो भी अपने लिए। यहाँ तो माया पर जीत पाने के लिए पाते हो अपने लिए, जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हरि को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है, जो भी तन मन धन लगाएगा उतना उनका भी सारा आपसी वो कॉपरेशन हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम हरि को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है, जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ तो रहने का कुछ भी नहीं है, अभी के लिए ही गायन है। कौन सा गायन है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए और किनकी चोर लूट जाए, सफली उनकी होगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। बाबा कहते हैं गायन कब का है, अभी का है। अभी तो हालात क्या हो चुके हैं कि एक छोटे छोटे भी कितने भी धन के लिए इतने रूल बनते जाते हैं, कितने नियम बनते जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहती हैं ये अभी के लिए गायन है, किनकी धबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, सफली होगी उनकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने, अब कहती हैं अपने तन मन धन सब इसमें लगा दो। फिर शिव बाबा क्या बता रहे हैं, अपना तन मन धन सब इसमें लगा दो। फिर बाबा बता रहे हैं इसने ब्रह्मा ने भी तो सब कुछ नौछावर कर दिया। बाबा ने जैसे शिव बाबा मिला, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, सब कुछ नौछावर कर दिया। बाबा ने ये कहा बस माताओं की ट्रस्ट बनाई, उनको दे दिया। बाबा ने किसी भी बच्चे को कुछ नहीं दिया, अपने परिवार में किसी को कुछ नहीं दिया, बस ईश्वर के कार्यार्थ लगा दिया। इसने भी सब कुछ नौछावर कर दिया ना, इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। कई बहुत दान करते हैं, करके गए हैं, कुछ ना कुछ धर्मशालाएं बनाई, स्कूल कॉलेजेस खोले, तो उनके लिए क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। नाम तो होता है ना, वो डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। कोई तो समाज सेवा के लिए करते हैं, कोई मंदिर आदि बनाने के लिए करते हैं, तो बाबा कहते वो हो गया इनडायरेक्ट, और तुम बच्चे करते हो डायरेक्ट। वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई तो स्थापन नहीं होती है, अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए क्या बनना है, कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना। वो फिलैंथ्रोपिस्ट और कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट में अंतर है। वो तो कुछ दिया, कुछ प्रॉपर्टी का दिया, कुछ नहीं दिया। बाबा कहते यहाँ क्या करना, तन मन धन संकल्प स्वास्थ्य सब कुछ समर्पण करना है, तो इसको कहेंगे कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट। अभी तो कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में भी गाते थे ना, मैं वारी जाऊं हम वारी जाएं। इसमें खर्चा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, वारी जाने में कोई खर्चा होता है, कुछ भी नहीं होता है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ तुम जो कुछ करते हो वह अपने लिए करते हो। फिर चाहे तो 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16108 में। बाबा ने बता दिया पुरुषार्थ जो जितना करे, चाहे 8 में आओ, चाहे 108 में आओ, चाहे 16108 में, चाहे ये तुम यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए। फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की, चाहे 16100 की 8 में। फिर से बताती, यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 में, चाहे 16108 में, 5 विद ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। 5 विद ऑनर बनने के लिए क्या युक्ति बताई, कि ऐसा योग लगाओ जो कर्मातीत अवस्था को पाओ, कोई सजा ना खानी पड़े। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। ना पास होने के कारण 2 कला कम हो गई है, त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए, त्रेता भी स्वर्ग है, लेकिन जिसको बाबा कहते हैं सेमी स्वर्ग है। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना पड़ता है। बाबा ये सब कुछ आपका है। अब कई बच्चे ऐसे हैरान होते थे, हम कहेंगे बाबा ये सब कुछ आपका है, फिर हम क्या करेंगे। बाबा ऐसा नहीं करते थे, बाबा तो हमेशा कहते थे बच्चे ध्यान रखना है और निमित भाव से करो। दादी का हमें याद आता है, दादी हमेशा कहती कुछ भी है उसको 4 हिस्से में करो, 1 ईश्वर सेवा, 1 अपने लिए परिवार के लिए, 1 थोड़ा बहुत आई वेल के लिए रखो। बाबा ने ये सिखाया था। बाबा कहते मैं लेकर के भी क्या करूंगा, बाबा जो कुछ बाबा को देते हैं, बाबा कहते इसको सेवा में लगा लो। तो बाबा हमेशा क्या, आज भी बाबा बता रहे हैं, बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहेंगे ये सर्विस में लगा दो, मैं जो तुमको मत देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, कई बार नए नए आते थे, ज्ञान पूरा नहीं होता था, बाबा को देते थे, बाबा कहते इससे लिटरेचर बनवा लो और इससे सेवा होगी। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ये कार्य करो, यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है कि बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता। आज बाबा ने क्या टाइटल दिया, मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा ये प्रश्न उठ नहीं सकता। आप जैसे घड़ी चलती रहती है, ये थोड़ी कहेंगे कब बंद होगी, 12 के बाद एक आएगा ही। तो बाबा कहते ये ड्रामा कब बना, कैसे बना, कब पूरा होगा, इसका कोई प्रश्न नहीं, चलता ही रहता है। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना कब पूरा होगा ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें ये अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। कितनी गहर बातें हैं, स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं, बिंदी मस्तक पर बीच में ब्रह्मकुटी के बीच में वहाँ बिंदी लगाती ना, तो बाबा कहते आत्मा का निवास स्थान भी वही है। माताएं यहाँ मस्तक पर बिंदी देती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को तिलक दे रहे हो, तिलक लगाते ना, तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। कई सोचते बाबा हमारे को कृपा कर देंगे, हमको बना देंगे। बाबा की तो वो तो बनना ही है, लेकिन मेहनत तो तुमको करनी है ना। ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, तुम ही अपने को आपे ही राज तिलक देते हो। ये है मन मना भाव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिलता है। बाप नहीं देते, जितना याद करेंगे उतना ऊंचा अच्छा तिलक मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, ये है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो, तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते क्या से क्या बाबा बनाते, संगम युग में भी देखो क्या थे और क्या बाबा ने बना दिया। भविष्य में तो प्रिंस बनेंगे, संगम युग पर भी अभी बाबा कैसी पालना करते, जैसे प्रिंस एंड प्रिंसेस की पालना करते, वो बाबा ही तो कर रहा है ना। तो बाबा कहती तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो बाबा कहते हैं ये तो समझ की बात है ना, पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। अब धारणा और योग का आपस में बैलेंस है, आपस में कनेक्शन है। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी, योग में ही मेहनत है। इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते आयु भी चली जाए, फिर भी पावन कोई बन नहीं सकता। देखो ना कितने वर्षों से गंगा स्नान करते ही जाते हैं, कितने करते ही चले आ रहे हैं, कोई पावन तो बना नहीं। स्नान भी करते रहते हैं, पुकारते भी रहते, हे पति पावन आओ। बाकी गंगा स्नान करते करते आयु भी तो चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। फिर इसका दूसरी बात अभी बाबा बता रहे हैं, वहाँ भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, और यहाँ बाबा क्या करते हैं, यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को विश्व की बादशाही देते। वो गरीबों को कणा दाना देंगे, कभी खाना दे देंगे, कभी थोड़ा पैसा देंगे, कभी कपड़ा दे देंगे। लेकिन यहाँ बाबा क्या करते हैं, यहाँ बाबा गरीबों को, यहाँ वे खुद आकर ईश्वर गरीबों को विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवास है ना, भारत जो 100% सॉल्वेंट था वह इस समय 100% इनसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता। भारत जो इतना ऊंचा, इतना हालत हो गई, तो बाबा ने आकर के फिर 100% सॉल्वेंट बनाते हैं। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हो, इतना ऊंच बनाए, इतना कुछ देते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे क्या करते, बाप इतना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हो। बाप कहते हैं जब ऐसे गाली देते हैं तब मुझे आना पड़ता। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, जब गाली देना शुरू कर देते हैं, तो जिसके लिए गायन भी है, जब जब धर्म की ग्लानी होती है, तो बाबा कहते जब ऐसे बाप को गाली देते हैं तब मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, ऐसे गाली देंगे, ऐसे करेंगे तब बाबा आएंगे। तो बाबा कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त, बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर के ढेर। कितने गुरु हैं देखो तो सही, कितने बनते ही जाते हैं, ढेर गुरु हैं। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर के ढेर हैं। अकाल को तख्त ये मिलता है, फिर बाबा बता रहे अकाल मूर्त शिव बाबा को ब्रह्मा का ये तख्त मिलता है। तो बाबा कहते अकाल को ये तख्त सिर्फ ये मिलता है। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते, कभी कभी बाबा पहले यूज करते थे, कभी बाबा बता देना, देखता हूँ कि कोई ऐसा अच्छा बाबा का वारिस क्वालिटी बच्चा आया, लेकिन समझाने वाली जो है वो इतनी समझा नहीं पाती, तो बाबा खुद टच करके यूज करके उसको फटाफट ज्ञान दे देते थे। तो बाबा कहते हैं, कहते मैं इनमें प्रवेश कर, बाबा कहते हैं अकाल को तख्त सिर्फ ये मिलता है, तुम बच्चों का तख्त भी यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ, इस समय इनका ही पार्ट है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। उसमें बाबा प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा बाबा के साथ हम बच्चों का भी पार्ट है, इस समय इनका पार्ट है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, नया कोई समझ ना सके, कितना भी समझाओगे नहीं समझेगा ना। तो बाबा कहते नया कोई समझ ना सके। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरा सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग लगाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। आज का वरदान कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई भी कड़ा नियम बनाओ। अलबेलेपन को समाप्त करने के लिए बाबा हमेशा कहते कोई कड़ा नियम बनाएंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे तब तो होगा ना। इसके लिए कोई भी कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे। अब चौकीदार लगाते हैं ना रात को, जो होता है यहाँ बड़े शहरों में होता है, कॉलोनी कॉलोनी सोसाइटी में चौकीदार होता है। तो बाबा कहते कौन सा चौकीदार लगाना है, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो ही जाएगा, हमेशा होता है ना, कर लेंगे हो ही जाएगा, अभी सिर्फ कर लेंगे हो ही जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डनलप को छोड़ो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है, जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। फिर है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। रोज साकाश देने के लिए अलग अलग पॉइंट्स मिल रही है ना। आज का है जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे। समय नजदीक व्यर्थ भी अपना पेपर लेने आता है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन चुकतु होने के लिए बाहर निकल रहे। कितनी अच्छी बात, व्यर्थ संकल्प आए डरो नहीं, ये बाहर छुट्टी लेने के लिए आए हैं, चुकतु होने के लिए बाहर निकल रहे, लेकिन चुकतु होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनका काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा साकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में भी नहीं आओ। उसका सेक में थोड़ा सा हल्का सा असर होता है ना, उसके सेक में भी नहीं आओ। अच्छा, अभी शक्तिशाली सेवा के लिए साकाश के लिए क्या सोमान रहे, क्या अभ्यास करना वो सुनेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। सोमान है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। योग अभ्यास है मस्तक के बीच में मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। शक्ति पुंज हूँ सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ते ही शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति से वातावरण शक्तिशाली बन रहा है। व्यर्थ और नेगेटिव वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। धारणा व्यर्थ से मुक्त रहना है। चिंतन है सदा स्मर्थ संकल्प चले उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन चाहिए। सदा स्मर्थ संकल्प चले उसके लिए किन किन बातों का अटेंशन चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास अव्यक्त मास है। बाबा अव्यक्त स्थिति से बहुत अच्छे अनुभव कराते हैं और 18 जनवरी बाबा का व्यक्ति दिवस भी है और साथ साथ बाबा मिलन का दिवस भी है। उसके लिए नया ग्रुप अभी दो चार दिन में, आज से ही डबल विदेशी भाई बहनों का आना भी शुरू हो रहा है। इस 18 जनवरी के ग्रुप में भी काफी डबल विदेशी भाई बहने, कई देशों से तो बड़े बड़े ग्रुप में आ रहे हैं, जैसे मलेशिया, वियतनाम है, कई देशों से बड़े बड़े ग्रुप आज से आना शुरू हो रहा है। और जैसे वो आ जाएंगे तब कल से ही उनका प्रोग्राम अनाउंस किया जाएगा। और बाकी भारतवासी भाई बहने भी एक दो दिन में आना आरंभ कर देंगे। 18 जनवरी को तो पूरे भारत से भिन्न भिन्न स्थानों से बाबा के लाडले बच्चे आते ही रहते हैं, तो बाबा का घर है और बाबा उनको भरपूर करते ही रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।